खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
सामने स्थान खाली है, पीछे वाले आके आ जाएं तो क्लास कराने वालों को भी थोड़ा उमंग उत्साह आए, तो खाली खाली देखकर ठीक नहीं लगता है। तो प्रकृति ने अच्छा पेपर लिया है आप लोगों का। अभी लग रहा है कि थम रही है बारिश। चलो, जो नहीं गए उनको भी क्लास का लाभ मिलेगा, जो गए अवश्य भीगने का आनंद ले रहे होंगे। हाँ, मैंने सुना 50-60 लोग कह रहे कि हम तो राउंड लगा के आएंगे, फोन करके पूछा हमने तो बोले काफी लोग तो लौट चले, लेकिन 50-60 कह रहे हैं कि हम तो राउंड लगाएंगे जरूर। तो उनको वहां का लाभ लेने दो और आपको क्लास का लाभ, ठीक है। तो हमारे बीच में आदरणीय राजयोगी भ्राता छोटेलाल भाई जी हैं। हम एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यूं तो आपका लौकिक जन्म राजस्थान की धरनी में हुआ है, लेकिन अलौकिक जन्म फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। आज से करीब 45 वर्ष पूर्व हरियाणा की धरनी पर फरीदाबाद में आपको ज्ञान मिला और लगभग 40 वर्षों से आप इस मधुबन की धरनी पर समर्पित रूप से रहते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आपकी विशेष सेवा तो आंगन की सिक्योरिटी की है और साथ ही साथ जो पूरे ही साल भर इस पांडव भवन में रात्रि क्लास होती है उस रात्रि क्लास के लिए स्पीकर फिक्स करना वो भी आपकी सेवा है। लेकिन आए दिन आप पूरे भारत भर में भट्टियां कराने भ्रमण करते ही रहते हैं तो अवश्य ही दूसरे को सौंप कर जाते हैं आपकी अपनी जिम्मेवारी। तो आज आपका सौभाग्य है कि ये यहीं पर है और हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि बारिश में जो नहीं गए उनको फायदा मिलना चाहिए क्लास का, तो तैयार हो गए। तो अचल अडोल स्थिति क्या होती है इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। हम सभी देख रहे हैं कि जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है तो संसार में हलचल बढ़ती जाती है। उधर हलचल और इधर हम सभी की स्थिति अचल और अडोल बनती जाए तभी हम अनेक आत्माओं को हलचल के प्रभाव से मुक्त रख सकेंगे। यदि हम ही हलचल में आ गए तो दूसरों को कैसे मुक्त रख सकेंगे। तो समय के अनुसार हलचल तो बढ़ेगी लेकिन हमारी स्थिति पर उसका कोई प्रभाव नहीं आए। उसके प्रभाव से हम मुक्त रहें तभी अनेकों को भी मुक्त कर सकेंगे। तो ऐसी स्थिति कैसे बनाएं, क्या उसके लिए पुरुषार्थ करें। अभी भी आप सबने देखा जाना था बाबा की पहाड़ी लेकिन ड्रामा कुछ और ही चेंज हो गया। तो कईयों के मन में थोड़ा सा संकल्प आया होगा ये क्या हुआ, हमको तो वहां जाना था। लेकिन जैसी परिस्थिति वैसे अपने आप को परिवर्तन कर लो, जैसा समय वैसे अपने आप को मोल्ड कर लो। तो ऐसी आत्मा हर परिस्थिति में अपनी स्थिति को एक रस बनाकर रख सकेगी। इसके लिए बाबा ने हम सभी को बहुत ही सुंदर ड्रामा का ज्ञान दिया है। ड्रामा का क्या ज्ञान दिया है, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वही होना है, उसमें ही कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी भी है। ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसलिए किसी के पार्ट को देखकर हम ये क्वेश्चन पैदा ना करें ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, जो भी आत्मा जो पार्ट बजा रही है उस अनुसार वो उसके कर्मों के हिसाब किताब अनुसार वही उसी में ही उसका कल्याण समाया हुआ, वैसे ही उसके कर्मों का हिसाब किताब चुकतु होना है। ये ज्ञान हमें बुद्धि में रहेगा तो सभी प्रकार के हलचलों के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। एक ऐसा ही अनुभव, एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, दो दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी ने एक सेंटर पर क्लास कराने के लिए भेजा, सुबह 7 बजे क्लास था। तो उस दिन सुबह 6 बजे से ही जोर की बरसात शुरू हो गई, फुल फोर्स की बरसात। मैं बाबा को याद करके कहने लगा, बाबा अभी इतनी बरसात हो रही है तो बरसात में कौन आएगा, बरसात बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा ताकि अधिक भाई बहन आ सके हम उनकी सेवा कर सके। लेकिन बरसात बंद नहीं हुई, योग भी किया हमने, योग का प्रयोग भी किया लेकिन फिर भी बरसात बंद नहीं हुई। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत बार ऐसे प्रयोग से बरसात आई भी है और बंद भी हुई है। काम तो सब बाबा ही कराता है लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना उसके लिए। तो उस दिन बरसात बंद नहीं हुई तो हमने अपने आप को ऐसे परिवर्तन कर लिया, बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया, बच्चे जो हो रहा है उसमें ही कल्याण समाया हुआ है। तो मैं क्यों ज्यादा सोचूं, सेवा कराने वाला तो बाबा है, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, मैं तो बरसात में भी गाड़ी में बैठ के चला जाऊंगा। तो हमने अपने विचारों को वहीं फुल स्टॉप लगा दिया और मन में कोई हलचल नहीं आई और हम गाड़ी में बैठ के ही सेंटर पर गए क्लास कराने के लिए। जैसे ही अंदर गए बहन जी ने वेलकम किया, परिचय दिया और कहा कि देखो आज मधुबन से भाई आए हैं, आज ही बरसात आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कमाल है, हम तो सोच रहे अच्छा नहीं हुआ भाई, बरसात में कौन आएंगे, लेकिन बहन जी कहती है अच्छा हो गया। तो क्या अच्छा हो गया? बोल देखो हमारे यहाँ घरों में माताएं पापड़ बनाती हैं, कई बाहर वाले कंपनी वाले बनवाते हैं ना पापड़, तो मौसम खुला होता है, धूप खिली होती है, पापड़ बनाते हैं तो पापड़ सूख जाते हैं। अब आज आ गई बरसात तो पापड़ बनाएंगे तो पापड़ सूखेंगे नहीं, इसलिए किसी माता ने पापड़ बनाए नहीं तो सारी माताएं घरों में फ्री हो गई, तो सारी माताएं क्लास में आ गई, तो जो हुआ अच्छा हुआ। तो ऐसे हम ड्रामा के ज्ञान को यदि बुद्धि में रख के चलते हैं तो उससे हमारी स्थिति कभी भी हलचल में नहीं आएगी, अचल डोल बनी रहेगी। और अचल डोल स्थिति बनाने के लिए हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाने के लिए, सहज निरंतर योगी बनने के लिए, पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ये तीन अभ्यास सब अभी से ही हम रोजाना की दिनचर्या में करके चलें। इस भट्ठी को भी यदि आपने सफल बनाना है, ज्ञान योग की बातें तो आप सबने बहुत सुनी होंगी और की भी होंगी, लेकिन उनको यदि प्रैक्टिकल में लाना है, जीवन में कुछ परिवर्तन करके अनुभूति करके जाना है, तो उसके लिए तीन अभ्यास अभी से ही शुरू कर दें। पहला अभ्यास, यहां बैठे बैठे ही आप सुनते सुनते ही कर सकते हैं भले, पहला अभ्यास आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है, जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। इससे क्या होगा, हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, वैसे विचार बनेंगे, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूल आधार क्या हुआ, दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना ले, रूहानी बना ले, दिव्य बना ले, तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5-10-15 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। क्या होगा इससे कि जैसे ही हम अशरीरी बनते हैं, निराकारी बनते हैं, तो आत्मा स्वतः इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया के नीचे आ जाती है, और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वहां कैसी भी हलचल हो लेकिन आप सेफ रहेंगे। देखो एक बरसात का ही अनुभव मुझे याद आया है, पुरानी बात है, उस समय दिल्ली जोन की इंचार्ज गुलजार दादी होती थी, तो हरियाणा में एक सेंटर पर उद्घाटन था, मकान नया बना था, गुलजार दादी को ही वहाँ आना था, तो और बरसात का ही मौसम था, तो देखा तो बहुत काले काले बादल भी हो रहे हैं और आसपास में बरसात भी हो रही है। तो बहन जी ने क्या किया, 10 लोगों को फिक्स कर दिया, आपको उद्घाटन से कुछ लेना देना नहीं है, आप बाबा के कमरे में ही आपको योग करना है 1 घंटा इतने से इतने बजे तक, और बाबा को यही बोलना है कि बाबा कुछ भी करो लेकिन आज इस समय यहाँ बरसात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके रथ को यहाँ उद्घाटन करने के लिए आना है। 10 लोग बाबा कमरे में बैठ के योग करने के लिए, और आसपास से फोन आ रहे हैं उसी शहर से, बहन जी यहाँ तो बरसात हो रही है, आपके वहाँ नहीं हो रही है क्या? बोले यहाँ तो कुछ भी नहीं। तो दादी आई और हल्की सी थोड़ा सा बूंदाबांदी सी फुहार सी आई, और लोग बैठे रहे छाता लेकर बैठे, और दादी ने ओपनिंग किया, उसके बाद भोग लगा बाबा को। भोग जब लेके गई गुलजार दादी, तो खुद ही संदेशी थी, तो भोग लेके वतन में गई दादी, तो वहां देखा तो बाबा छाता लेके बैठा हुआ है। अब भगवान जहां छाता लेके बैठा हुआ, आप सोचो वहां बरसात कैसे आएगी है, और लोग फोन कर रहे हैं लेकिन 1 किलोमीटर के आसपास में कोई बरसात नहीं, बाहर खूब बरसात हो रही है। तो इस तरह से यदि उस सर्वशक्तिवान को हम छत्र छाया बना लेते हैं, तो दुनिया में कितनी भी हलचल हो आप उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो कैसे बनेगी छत्र छाया भगवान की सर्वशक्तियों की? जैसे ही हम शरीरी बनते हैं, निराकारी बनते हैं, तो उसकी छत्र छाया हम सभी के ऊपर आ जाती है, और जहां सर्वशक्तिवान की भगवान की छत्र छाया हो तो आप कैसी भी हलचल हो सब में सेफ रहेंगे। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए तीसरा अभ्यास, दो तो मैंने बताया, तीसरा अभ्यास स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देख कर चलो, मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। इमर्ज कर लो, हरेक अपने सामने वो अपना फरिश्ता रूप, आज नहीं तो कल सबको फरिश्ता बनना तो है ही है। हमारे इस संगम युगी पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। तो जो हमें अंत में बनना है उस अपने संपन्न स्वरूप को, संपूर्ण स्थिति को बार बार अपने सामने लाओ कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। उसमें स्थित हो जाओ तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाएंगी। जब स्वयं को फरिश्ता समझेंगे, दूसरों को उस रूप में देखेंगे तो किसी की भी वहां कमी कमजोरी नजर नहीं आएगी, हरेक की गुण विशेषता महानताएं नजर आएंगी तो आपके अंदर भी आती चली जाएंगी, आप भी एक विशेष आत्मा महान आत्मा बन जाएंगे। देखो बाबा हर बच्चे की कमी कमजोरियों को भी जानता है, गुण विशेषताओं को भी जानता है, लेकिन किसी मुरली में आज तक बाबा ने यह नहीं कहा फलाने बच्चे के अंदर ये कमी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि वो हमारे वर्तमान पुरुषार्थी जीवन की स्थिति को नहीं देखता है, वो हमेशा हर बच्चे की संपूर्ण स्थिति में ही हर बच्चे को देखता है, इसलिए वहां तो किसी की कमी कमजोरी उसे दिखाई नहीं देती। तो हम भी अपने आप को, मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, फरिश्ता था डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर लाइट। इमर्ज कर लें हरेक अपने सामने वो अपना फरिश्ता रूप, और मुझसे चारों ओर लाइट माइट की पावरफुल किरणें फैल रही है। इस स्वरूप में स्थित होकर चलेंगे, देखेंगे, कर्म करेंगे तो आपकी स्थिति सब कुछ करते सबसे न्यारी और एक बाप की प्यारी बनी रहेगी। और बाबा के ये भी शब्द हैं, फरिश्ते के आगे कोई विघ्न परिस्थिति ठहर नहीं सकेगी। क्यों? क्योंकि वो इस देह और देह की दुनिया से परे की स्थिति है। तो ये तीनों अभ्यास सारे दिन की दिनचर्या में यदि हम विधि पूर्वक करके चलते हैं तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। करके देखिए, अभी से शुरू कर दे। अगली पॉइंट, अचल और अडोल स्थिति बनाने के लिए हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं, क्योंकि किसी भी कार्य करने के लिए सबसे पहले मन में संकल्प आता है, मुझे कार्य करना है, नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है। यदि वो संकल्प आपका पॉजिटिव पावरफुल है तो उसका रिजल्ट वैसा होगा, और यदि वो संकल्प व्यर्थ नेगेटिव है तो उसका रिजल्ट वैसा ही होगा। इसलिए जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप जा रहे हैं, हमारे एक एक संकल्पों में वो शक्ति आती जा रही है सिद्ध होने की, वैसा बनने करने की। इसलिए हम अपनी संकल्प शक्ति के महत्व को जाने पहचाने और उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बनाकर ही चलें। एक कोई क्लास करा रहे थे भाई, उन्होंने अपनी क्लास में बताया, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थे वो, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात और उस पर अटेंशन भी रहता है कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, सभी चेक करना हरेक अपने आप को, कि जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है सारे दिन में है, इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब हरेक अपने आप को पूछ ले, हमने रख तो लक्ष्य तो रख लिया निरंतर योगी या फरिश्ता बनने का, और विचार चल रहे हो धंधे दोरी के, दुनिया भी इधर उधर के, कैसे उस मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। तो जो लक्ष्य रखा है वैसे ही विचार, वैसे ही संकल्प हमारे मन के अंदर चले तो ही हम उस मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। तो हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने और उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बना के चलें। तो कैसे हमारे मन के विचारों का प्रभाव हमारे मन शरीर और कार्यों पर पड़ता है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव, ताकि पहले मैं सुनाता हूं एक नेगेटिव विचार का अनुभव ताकि हम अपने आप को उससे बचा सकें। एक भाई का फोन आया, उसको एक कंपनी में एक भाई का फोन आया, उस कोई बाहर का व्यक्ति था, उसने कुछ ऐसा गलत कार्य किया तो कोर्ट ने उसको मौत की सजा सुना दी, और ये समाचार टीवी पर पेपरों में आ गया। तो ये समाचार एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को पता चला, भाई फलाने व्यक्ति को फलानी डेट को फांसी चढ़ाया जा रहा, तो क्यों ना मैं कोर्ट में अर्जी दाखिल करके मैं इस व्यक्ति को अपने पास ले लेता हूं, मैं भी इसको मारूंगा लेकिन कुछ प्रयोग करके मारूंगा ताकि दूसरों के लिए कुछ नई चीज निकल आए। तो उसने कोर्ट में अर्जी दाखिल की और कोर्ट ने उसकी अर्जी को मंजूर किया, लेकिन दो शर्त रखी कि हम इस व्यक्ति को आपको देंगे लेकिन एक तो पुलिस हिरासत में ही ले जाना होगा और दूसरा कुछ भी प्रयोग करो लेकिन इसको मारना जरूर है। तो बोले ठीक है, उसने दोनों शर्त मंजूर की, वो व्यक्ति उसको मिल गया, दो पुलिस वाले भी उसके साथ आए और एक डॉक्टर को और एक व्यक्ति को बुला लिया, सभी 5-6 लोग एक बंद कमरे में बैठ गए। और जिस व्यक्ति को फांसी चढ़ाया जाना था उसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने बता दिया कि देखो भाई, हम आपको फांसी नहीं चढ़ाएंगे, हमने ये जो बैग रखा है ना इसमें एक सांप को पकड़ के रखा है, सांप को आपके पास ला के छोड़ेंगे, सांप आपको काटेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसको ऐसे बता दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी ताकि वो सांप को देखकर डरे नहीं। और उसके बाद दूसरा जो एक व्यक्ति बुलाया हुआ था उसको मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने कहा कि भाई जाओ वो बैग को उठा के लाओ और इसके पास ला के सांप को छोड़ दो। उसने बैग उठाया और उसके पास ला के उसकी चेन खोल के उसने कहा कि मैंने अभी सांप को छोड़ दिया था, उस बैग में कुछ भी नहीं। लेकिन कैसे मन के विचारों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, उसका वो प्रयोग कर रहा था, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर था ना, वो उसकी तो आंखें बंद थी, उसको दिखाई तो दे नहीं रहा था लेकिन कानों से जरूर सुन रहा था। तो जब उस व्यक्ति ने ऐसे कहा कि मैंने अभी सांप को छोड़ दिया है, तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आया और उसके पैर में से हल्के से पिंच चुभो दी, और पिंच चुभोने के बाद उसको लगा कि मेरे को अभी सांप ने काट खाया है, अब मैं मर जाऊंगा। बस ये विचार धीरे धीरे उसके मन में बहुत गहराई तक समाता चला गया और 15 मिनट के बाद उसके मुख से झाग निकलने लगे, आधा घंटे के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। तो जब शरीर छोड़ दिया तो जो दूसरा एक डॉक्टर बुलाया हुआ था उस डॉक्टर को कहा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने, भाई अभी आप इसके शरीर का थोड़ा सा खून लेकर चेक करो। तो उसने उसके शरीर का थोड़ा खून लेकर चेक किया तो उसने पाया कि उसके सारे खून में सांप का जहर कहां से आ गया, सांप ने तो उसको काटा ही नहीं था, कहां से आ गया, संकल्प के द्वारा। क्योंकि उसके मन में ये विचार ये संकल्प गहराई तक समाता चला गया कि मेरे को सांप ने काट खाया और अब मैं मर जाऊंगा, बस इस संकल्प ने उसके शरीर पर वैसा ही प्रभाव डाला। तो देखो एक नेगेटिव विचार के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, जो हम संकल्प करते हैं हो जाता है, तो पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर सकती है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का अनुभव। एक भाई को कैंसर हो गया था और अंतिम स्टेज में पहुंच गया, डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया, उसने डॉक्टर की बात सुनकर एकदम पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया कि नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है, मुझे इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों को लेकर वो चलता रहा। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर बॉडी जिन सेलों से बना है, वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते जाते हैं, ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है, जैसा हम संकल्प कर रहे हैं। तो उसने जब ये संकल्प किया मुझे जिंदा रहना है, भगवान के की सेवा करनी है, कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए और इस आधार से जो कैंसर के बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर खत्म होते गए। क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स निकलते गए। तो आज इस बात को लगभग 16 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की अक्की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प के अंदर। यदि हम ये निश्चय कर लें कि मुझे बाप समान निरंतर योगी फरिश्ता बनना ही है, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको वैसा बनने करने से रोक नहीं सकती है। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति आए, लेकिन कभी अपने मन में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। अगली पॉइंट, अचल और अड़ोल स्थिति बनाने के लिए हम अमृत वेले आंख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान इमर्ज कर ले, मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लाइट हाउस माइट हाउस, ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करो, तो समान से क्या होगा, हमारे विचार महान बनते हैं, और जहाँ विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना, चलडोल बनाना सहज और सरल हो जाएगा। समान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है और दूसरों से भी सम्मान मिलता है, इतनी ऊंची महान है वो समान की सीट। बाबा ने हमको बहुत सारे समान दिए हैं, जो भी समान अच्छा लगे हैं, और आपने डायरी में नोट भी किए होंगे, कितनी बार सुने भी हैं, लेकिन ये हर एक अपने आप से पूछो कि हमारा मन उस समान को कितना स्वीकार करता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। जब तक मन स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो शक्ति वो पावर आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो सुनने के साथ साथ हम उसका स्वरूप बने, मन से स्वीकार कर चलें, उस नशे में रहें, तो उसकी पावर की अनुभूति होगी, वो शक्तियां गुण विशेषताएं हमारे जीवन में आएंगी। तो समान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अपमान को भी खत्म किया जा सकता है, जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाता वो समान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। सुनिए एक ऐसा ही अनुभव, मैं हर बात के पीछे एक अनुभव सुना रहा हूं ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। देखो ज्ञान आप सब लोगों के पास है, योग भी आप सब करते हैं, लेकिन जब किसी के पास भी कोई समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो वहां कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है, प्रश्न उठता है क्या करें कैसे करें, सब कुछ होते भी क्यों कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि ज्ञान भूल जाता है, भगवान के साथ बुद्धि योग टूटा हुआ है, इसलिए समय पर क्या करना है उसकी समझ नहीं आती है। अगर आपने अनुभव किया हुआ है, प्रयोग किया हुआ है, तो अनुभव अनुभवी मूर्त बनाता है, अनुभव निश्चय बुद्धि बनाता है, अनुभव अनेक विघ्न परिस्थितियों को पार करने की शक्ति देता है, और इसलिए भावन का अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी का काम करता है, अनुभवी को कोई हिला नहीं सकेगा। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव, एक भाई ने जमीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 20 लाख रुपए में, बातचीत होगी, सौदा फाइनल होगा, कहा फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, कोई किसी से पैसे ले लेते हैं, देते नहीं है, और फिर वही विचार बुद्धि में घूमते रहते हैं, ज्ञान योग सब एक तरफ रह जाता है और हलचल में आ जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है आप फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। तो पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए, तो बोल ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते। तो उसने 20 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया कि आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे ही बराबर के दो प्लाट थे, बात हुई थी एक नंबर की, वो देना चाहता है 2 नंबर। तो बोल नहीं मुझे तो एक नंबर ही चाहिए। बोले एक नंबर नहीं मिलेगा, कोई मौके की जगह होगी। तो बोल ठीक है आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया महीना बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उसका भाई का फोन आया, भाई साहब मेरे सामने ऐसे ऐसे बड़ी समस्या आ गई है, वो व्यक्ति पैसे भी नहीं दे रहा, प्लाट भी नहीं दे रहा, मैं क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता है, टेंशन हो गया है। तो हमने उसे प्रयोग बताया, मैंने कहा आप एक प्रयोग करिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूं जिसने मेरे पैसे लिए। इस तरह से मैंने कहा रोजाना 1 घंटा 21 दिन योग करो, और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए जिसने मेरे पैसे लिए हैं, और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए है। मैंने कहा ये संकल्प जरूर करना तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। तो बोल ठीक है। उसने ऐसे योग करना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ जिसने मेरे पैसे लिए हैं, ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए, इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे योग कराता गया, योग करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 20 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने कराया, बाबा के योग ने कराया। आप में से भी किन्हों के सामने कोई ऐसी समस्या हो तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं। अगले पॉइंट, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाएं। क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे करें, ये करें वो करें, ऐसे व्यर्थ के विचार स्थिति को हलचल में लाते हैं। क्यों व्यर्थ के विचार चलते हैं? जब हम अपने आप को फ्री खाली छोड़ देते, मन को कोई काम नहीं देते, लक्ष्य से दूर चले जाते हैं, तो वहां हलचल पैदा होती है। तो इसलिए कभी भी जिनको जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता पानी है, अचल अटल स्थिति बनानी है, अपने आप को कभी फ्री नहीं छोड़ें, खाली नहीं छोड़ें, सदा ही ज्ञान के समान का मनन चिंतन, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन स्टडी करके चलना, इन सब बातों में अपने आप को बिजी रखें, तो वहां व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। और आपके विचार समर्थ शक्तिशाली बने रहेंगे। तो बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो कैसे जहां व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, सुनिए एक अनुभव। एक भाई को एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बाबा के बच्चे थे, वो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी। पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो उन्होंने फोन पर पूछा कि मेरे मन में थोड़ा सा ऐसे विचारों की हलचल है व्यर्थ की, तो मुझे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप गाइड करेंगे हम। तो उनको बताया, आप जब इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ाए याद किया है वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देना जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफेद कपड़े पहन के और बैज लगा के जाना जो दूर से दिखाई दे। तो बोल ठीक है, उसने ऐसा ही किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। गया वो, जहां पहुंचा तो दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज पर गया। तो बैज को देख कर वो कहते हैं, अच्छा आप ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। बोल फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोला हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोल हाँ जी। तो बस जो कुछ उससे पूछा गया फटाफट उसका वो जवाब देता गया। तो और उसने थोड़ा सा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया। योग पूरा हो गया है फिर भी उनकी आंखें ना खुली। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा, साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है। तो उनकी आंखें खुली, अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा, तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 3-4 मिनट का ही गीत है, गीत पूरा हो गया फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा, साहब अभी गीत पूरा हो गया, तो उनकी आंखें खुली, अच्छा आप तो गीत गाना बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमाल। इसलिए कैसी भी परिस्थिति समस्या हलचल हो, लेकिन कभी अपने मन में व्यर्थ के विचारों को नहीं लाना है। सदा ही समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चले तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम उसके पहले मैं सुनाऊं अगली पॉइंट, उसके पहले ऐसे अनुभव सुनने के बाद आप में से भी कईयों के सामने कोई छोटी मोटी समस्या परिस्थिति होती है तो आप भी सोचेंगे हम भी प्रयोग करें, जरूर करो। लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 7 बातों की आवश्यकता है। उन 7 बातों को आप अपने जीवन की धारणा में लाओ और फिर प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली बात, हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए, ज्यादा जितना भी हो। अगर आपका 4 घंटे योग का चार्ट है तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से फिर ऊपर उठ जाएंगे। आपको कोई भी हलचल परिस्थिति प्रभावित नहीं करेंगी आपकी स्थिति को। आएंगी परिस्थितियां हिसाब किताब चुकते होने के लिए, लेकिन आपकी स्थिति पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन परिस्थितियों से आपकी स्थिति अधिक ऊंची है, शक्तिशाली है। तो इसलिए 4 घंटे योग का चार्ट जरूर बनाए। कैसे बनाएंगे? जो मैंने 3 अभ्यास बताए वो अगर आप रोजाना की दिनचर्या में करके चलते हैं तो 4 घंटे क्या पांच छह घंटे आठ घंटे तक भी योग का चार्ट आप बना सकते हैं एक दिन का, यदि वो तीनों अभ्यास विधि पूर्वक करके चलो तो। एक सेवाधारी माता मेरे पास आई, हमारी पांडवन के आंगन में ही सेवा है दिन के समय सिक्योरिटी की, तो कहने लगी भाई जी मेरी ये समस्या वो समस्या वो समस्या वो समस्या, आठ दस समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। उस दिन मैं कहीं बाहर जा रहा था पांच दिन के लिए बाबा की सेवा में, तो मैंने माता जी को कहा माता जी मैं अभी बाहर जा रहा हूं पांच दिन के लिए बाबा की सेवा में, तो आप ऐसा करो तब तक दो घंटा बैठ के दो घंटा कर्म करते योग कर लो पांच दिन तक, और पांच दिन के बाद आप मेरे से मिलना। तो बोल ठीक है, मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती रही दो घंटा बैठ के दो घंटा कर्म करते, और पांच दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मिलने के लिए आई तो पूछा बोलो माता जी क्या समस्या है, तो माता जी कहती है भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्या कहां है क्यों ज्यादा है, जहां हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है वहीं ज्यादा समस्या है। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। दूसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी है। एक ही स्थान पर बैठ के और एक ही समय रोजाना योग करें जितने भी दिन करना हो। तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए जैसी परिस्थिति जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। कहीं दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुखहर्ता सब करता हूं, कहीं अशांति है किसी प्रकार की तो मैं पीस हाउस हूं, कहीं शक्तियों की आवश्यकता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। चौथी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए हमारे मन की निस्वार्थ भावना, शुभ भावना, कल्याणकारी भावनाओं का होना जरूरी है। कैसी भी कोई व्यवहार करे लेकिन हमें अपने मन में सदा ही शुभ भावना हर एक के प्रति रख के चलनी। पांचवी बात, चार बात हुई ना, पांचवी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए हमारी पवित्रता नेचुरल होनी चाहिए, इजी सरल। कईयों को पवित्रता बड़ी मुश्किल लगती है, सोचने की बात है। हम इमर्ज करो अपने उस देवताई स्वरूप को, हम में से सभी अनेकों बार देवता बने हैं ना, और देवताई जीवन का गायन क्या है, विशेषता क्या है देवताई जीवन की, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब हमने उन विशेषताओं को महानताओं को अनेक बार जीवन में धारण कर देवी गुणों को, हम सब संपूर्ण पवित्र बने हैं और फिर से वही बनना है तो कौन सी बड़ी बात है। तो इमर्ज कर लो अपने उस संस्कारों को तो वो आपके अंदर नेचुरल वो देवी गुण विशेषताएं पवित्रताएं स्वतः आती चली जाएंगी, इजी लगेगी, कोई बड़ी मेहनत नहीं है। तो पवित्रता इजी हो। और अगली पॉइंट सातवीं बात ना, छठी बात मन बुद्धि की एकाग्रता का होना जरूरी है। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो भी रिसर्च किए वो दुनिया को भूल कर एकांत में चले गए, दुनिया जैसे कि उनके लिए है ही नहीं, बस जिस बात पर उन्होंने रिसर्च करनी है उसी को सामने रखा, उस पर ही मन बुद्धि एकाग्र किया तो उसको उन कार्य में सफलता मिली। तो अपनी मन बुद्धि की एकाग्रता होगी तो आप योग के प्रयोगों में सफल हो सकेंगे। सातवीं बात, पावरफुल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति का होना जरूरी है। इन सात बातों को आप अपने जीवन की धारणा में लाएं फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगली पॉइंट, अचरणोल स्थिति बनाने के लिए हलचल का कारण बनती है हमारे मन की नेगेटिव भावनाएं, दुर्भावनाएं, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बदले की भावनाएं, वो व्यक्ति को हलचल मिलाती हैं। तो देखो दुनिया ही ऐसी नेगेटिव भावनाओं वाली है तो ये तो सब कुछ होगा। आपने कोई ऐसा व्यवहार गलत कार्य नहीं किया फिर भी झूठा आरोप लगा दिया जाएगा, कुछ आपको दोषी बना दिया जाएगा, कोई गलत व्यवहार करेगा, ये सब कुछ होगा। लेकिन हमको बाबा ने क्या टाइटल दिया है, बच्चे तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनना है। विश्व कल्याणकारी अर्थात जिसके मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रहती है। तो कोई कैसा भी व्यवहार करे लेकिन हमें अपने मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रखकर चलना होगा। और उसके लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है, ज्ञान और योग का बल निरंतर इमर्ज रूप में रहना चाहिए, तभी भावनाएं सुश्रेष्ठ कल्याणकारी रहेंगी, अन्यथा ज्यादातर लोगों की भावनाएं गलत व्यवहार को देखकर बदल ही जाती हैं। तो जहां हमारे मन में निरंतर सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावनाएं हैं, तो उनमें इतनी बड़ी शक्ति है कि आप कैसे भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। आप में से कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, विरोध करते होंगे, कई ऐसे भाई हो सकते हैं जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, रुकावट डालती है, या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है, तो ऐसी आत्मा के मन के विचारों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, सुनिए ये अनुभव। तो एक भाई थे, बाबा के ज्ञान में चलते थे, उनका बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी, बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना है, इतना विरोध करती थी। लेकिन उनका बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार बाहर आना जाना होता था, तो बाबा के सेंटर पर भी क्लास करके आ जाते थे। लेकिन ऐसे कब तक ज्ञान में चलना, कोई दो चार दिन की तो बात नहीं है। तो भाई मधुवन आए एक बार बाबा से मिलने के लिए, ऊपर भी आए, यहाँ पांडवन में रुके, क्लास के बाद हमारे से मिले रहे। उन्होंने यही प्रश्न किया, भाई साहब मेरी युगल बहुत विरोध करती है ज्ञान में चलने से, मुझे रोकती है, मैं क्या करूँ। तो हमने उन्हें बताया कि यदि आप अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो तो आज से ही दो बातों का पालन करके चलना बहुत जरूरी है। पहली बात, एक तो चाहे आपको वो कितना भी विरोध करे, लेकिन एक तो अपने मन में कंप्लीट उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रख के चलनी है। दूसरा कि ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। अमृत वेले क्यों करना है, क्या करना है, वो मैं बतला रहा हूं। अमृत वेले हम सभी का अंतर मन शांत और खाली होता है, तो जिस भी आत्मा को हम शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे, वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचते हैं। कोई भी आत्मा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, किसी को भी आप शुभ भावना के वाइब्रेशन देंगे, उस तक पहुंचते हैं अमृत वेले। और उस समय हम सभी का अंतर मन शांत और खाली है, तो उन वाइब्रेशन को, विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वो आत्मा वैसे करेगी। ये है इसका विधि तरीका, इसलिए यह प्रयोग अमृत वेले ही करना है। प्रयोग क्या करना है, जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, उसको अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो, और इमर्ज कर इस तरह से उससे शुभ भावना के रूप में बातें करो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और मिनका वो बात भी उस समय बता देना जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे मिनका 7 दिन अपनी युगल को अमृत विले योग में लाइट के रूप में इमर्ज कर सूक्ष्म में, उससे शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा से लेकर उसको देना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। वो यहाँ से गए और अमृत वेले उठकर अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में मर्ज कर इसी तरह से उससे शुभ भावनाओं के बातें की, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। ऐसे उसने 3 दिन प्रयोग किया। 4थे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी, तो उसने सोचा आज योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है, तो मैंने 3 दिन तो प्रयोग किया ही शुभ भावनाओं का, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उसे पता चल जाएगा कि शुभ भावनाओं के प्रयोग का कुछ असर हुआ या नहीं। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आपको हो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी वो ऐसी छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन, उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो आप में से भी किनों के सामने कोई ऐसी समस्या हो तो आप भी यह प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली पॉइंट, अचल अड़ोलो स्थिति बनाने के लिए, एक तो जो मैंने बताया सदैव अपने श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर सेट होके चलो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, और दूसरा सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। सदैव भगवान को साथ ही बना के चलो, कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो, 2 मिनट बाबा को याद कर कहो बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ चलो और एक कार्य कराओ। तो आप अनुभव करेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ देता है, वैसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जहां सर्वशक्तिवान भगवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहां असंभव कार्य भी संभव होते चले जाएंगे। आपको कोई बहन ऐसी सेवा दे दें जो आपने कभी की नहीं हो तो सोचेंगे ना मैं ये सेवा कैसे करूंगी या करूंगा, लेकिन आपने बाबा की सेवा समझकर हां कर लिया तो फाइनल बात है भगवान आपसे वो सेवा करवा लेगा। क्यों, कराने वाला तो वो है आप, हमको तो सिर्फ निमित्त ही बनना है। इसलिए ये साधारण बहने नहीं, ये पवित्रता की देवियां हैं, भगवान के राइट हैंड है, समझो इनके द्वारा बाबा अपना कार्य करा रहा है। तो एक श्रीमत हो जाती है और उसमें ही कल्याण है। तो कभी बाबा की सेवाओं में ना नहीं करना, सदैव हां जी का पाठ पक्का करके चलना है। तो जहां हम भगवान को सर्वशक्तिवान को साथी बनाकर चलते हैं तो कैसे असंभव कार्य संभव हो जाते हैं, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, एक साल ही हुआ था, जैसा कि बताया ना 40 साल हो गए मुझे मधुबन में रहते हुए। और ये भी एक भाग रहा है, स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने वरदान देकर मधुबन निवासी बनाया है। तो उस समय तो शांतिवन ज्ञान सर्व कुछ नहीं था, जो था मधुबनी था, पांडवन और ओम शांतिवन बना था, वहीं बाबा आते थे, सब दादियां भी यहीं रहती थी। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, जिन भाई बहनों को क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो मेरे को भी दादी ने बोला आपको भाषण करना है। अब उस समय हमारे को तो कभी दो शब्द भी किसी के आगे खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। अब दादी ने कहा तो हम ना भी नहीं कर सके, भाषण करना आता नहीं है तो हम वहां भी नहीं कर सके। मैंने चुपचाप सुन लिया और मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा मेरे को दादी ने बोला भाषण करना है, तो मेरे को तो भाषण करना आता नहीं, मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बस ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भी भाषण किया है, सफलता पाई है, फिर से वही करना है तो कौन सी बड़ी बात है। तो थोड़ा शक्ति आ गई और बाबा को याद कर ये भी बता दिया कि बाबा यदि कुछ नहीं आए तो आप ही आना और आप ही भाषण कराना। तैयार हो गई जी, प्रोग्राम ऐसा था, टॉपिक किसी को बताए नहीं गए थे, कहा ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। और उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो हैं वो नहीं कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए हैं। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति वन का हाल फुल भर गया है। सीजन के समय ये प्रोग्राम चल रहा था क्योंकि बाबा से मिलने के लिए बहुत लोग आते थे ना यहाँ उस समय। तो सब दादे दादियां सामने बैठे हैं, जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। सात बहनें सात भाई सब नए नए, क्यों को ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया जिनको क्लास कराना भाषण करना आता नहीं है ताकि वो सीखे, इस विचार को लेकर ये प्रोग्राम बनाया गया। और उनमें से एक हम भी थे, तो आप सोच सकते हैं कैसा वो सीन होगा। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, तीन लोगों ने हमारे से पहले बोला, चौथा नंबर हमारा आया, हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल के देखा तो बड़ा वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। तो एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि ईश्वर हम क्या बोले, तो बिल्कुल ही अपने से अलग टॉपिक है। अच्छा सोचने का भी टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े हैं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया और मैंने बाबा को याद कर कहा कि बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए, ये भी बाबा को याद करके के बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो, पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं किसको दो शब्द बोलना नहीं आता और इतना अच्छा भाषण कर जाए, फर्स्ट नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है। तो उस दिन से एक निश्चय हो गया भले हमारे कुछ भी आए या नहीं, लेकिन यदि हम भगवान को साथी बनाकर चलें तो हमारे लिए असंभव कार्य भी संभव होते चले जाएंगे। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करना, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलना। और उसके बाद हमारा क्लास कराने का भाषण करने का प्रोग्राम शुरू हो गया, बाबा ने एक कला भर दी। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम अपनी बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर रख के चलें, क्योंकि वर्तमान से भी कहीं ज्यादा परिस्थितियां आगे बिगड़ती जाएंगी। तो उन हलचल की परिस्थितियों में हमको कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर बाबा से वैसा करने में हम सफल हो सकें, वो तभी हो सकेगा जबकि निरंतर हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहेगी। नहीं तो उन हलचल की परिस्थितियों के प्रभाव में आ सकते हैं। तो बुद्धि की लाइन क्लियर रखने के लिए क्या करें हम, उसके लिए तो बातें तो बहुत हैं लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं शॉर्ट बतला रहा हूं। दो बातों का ध्यान देकर चलें। पहली बात कि अब वापस घर जाने का समय आया है, तो अपने बुद्धि के सब प्रकार के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप बन जाएं। किसी को कहीं जाना होता है क्या करते हैं, जो जरूरी सामान है वो पैक करके रख लेते हैं, टाइम हुआ और उठा के सामान चल पड़े। अगर आपने पहले से तैयारी की हुई है तो, और यदि तैयारी बाकी है तो ये करना था, वो लेना था, ये काम बाकी था, उसमें इस समय पूरा हुआ तो समय की गाड़ी निकल जाएगी, छूट जाएगी, आप रह जाएंगे। इसलिए समय से पहले तैयारी करके चलना, मन के विचारों को सब तरफ से समेट कर एक बाबा में लगाना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी बात, बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र होना बहुत जरूरी है। एक स्वच्छ और पवित्र बुद्धि में ही भगवान की याद ठहर सकेगी। अगर किसी प्रकार की गंदगी है, स्वच्छता है बुद्धि में, तो वहां बाबा भूल जाएगा, फिर सोचेंगे फलाने को तो बाबा ने ये टचिंग दी, मैं बाबा से पूछा तो मेरे को बाबा कोई टचिंग नहीं देता। ऐसा नहीं कि एक को बाबा टचिंग दे दूसरे को नहीं दे, बाबा हर बात की हर बच्चे को टचिंग देता है, लेकिन हमारी बुद्धि की लाइन भगवान के साथ कितना क्लियर है, उस आधार से उस टचिंग को हम कैच कर सकेंगे। यदि दूसरी बातों में बुद्धि बिजी है तो उस टचिंग को बुद्धि कैच नहीं कर पाएगी। यदि किसी प्रकार की अस्वच्छता गंदगी है तो भी टचिंग कैच नहीं हो पाएगी। इसलिए पवित्रता में संपूर्ण बने, तो हम सब पवित्र तो बने हैं, लेकिन पवित्रता की संपूर्णता क्या है उसके लिए भी बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में 7 बातें बताई हैं। उन 7 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाएं तो और पवित्रता में संपूर्ण बने, तो निश्चित रूप से फिर बुद्धि की लाइन क्लियर रहने लगेगी। पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता, खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की, सब प्रकार की स्वच्छता है तो उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा, पहला स्वरूप। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना। मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ ब्रह्मा बाप ने किया है उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ब्रह्माचारी कहा जाता। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एक व्रता, एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी धारणा हमारी कहां तक बनी है, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। चौथा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, एक साकार मुरली में बाबा ने बात कही, अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। छठा स्वरूप, छठा या पांच, चौथा, पांचवा, पांचवा ना, हाँ, पांचवा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने बताया व्यर्थ संकल्प भी है पवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो, सदा समर्थ विचारों का स्वरूप बनकर चले, शक्तिशाली विचारों का। सातवा स्वरूप, छठा स्वरूप, छठा ना, हाँ, छठा स्वरूप संपूर्ण निर्विकारिता, अर्थात किसी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। सातवा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का, पवन का संकल्प अथवा स्वपन में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इन 7 बातों को अपने जीवन की धारणा में लाकर चलो तो बुद्धि की लाइन निरंतर बाबा के साथ बुद्धि स्वच्छ और पवित्र होगी, और जहां पवित्र स्वच्छ पवित्रता में आप संपूर्ण बनते जाएंगे तो ऑटोमेटिक बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहेगी। जब लाइन क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल हो सकेंगे। तो सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक बार हम नेपाल गए थे भट्ठी कराने, तो नेपाल के 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर था, बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर, और इधर भारत में भी 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर था, और बीच में दोनों देशों का बॉर्डर पड़ता था, तो 8 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो जैसे ही हम भारत से नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे निकल के, तो उस दिन कुछ मिलिट्री वालों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था, ना किसी को जाने दे रहे थे ना आने दे रहे थे, भाई रोड जाना था हमको। तो हम भी पहुंचे तो हमारे को बोला कि वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अब वहां भट्ठी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं नेपाल के सेंटर पर, और ये बॉर्डर पर मिलिट्री वाले कहते हैं वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे, तो एक बड़ी समस्या होगी ना, अभी क्या करें जी। तो मैंने वहां से थोड़ा सा अलग होकर और बाबा से साथ कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी समस्या बताई कि बाबा हम ऐसे ऐसे अभी नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं और यहां से 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, वहां भट्ठी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं और ये मिलिट्री वाले कहते हैं कि हमने बॉर्डर बंद किया हुआ है, वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अब मुझे क्या करना है वो आप ही बताओ, मैं वही करूंगा। ऐसे सारा समाचार बाबा को सुना के मैंने याद कर कहा। दो मिनट के बाद बाबा से टचिंग मिलती है, बच्चे इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ, आप उससे जाके बात करो। तो मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ कोई बैठा तो है। तो एक और भी भाई थे हमारे साथ वहां के, दोनों को सफेद कपड़े बैज लगा हुआ था। तो उस भाई ने जाकर कहा कि साहब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं और ये भाई हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर से आए हैं और हमारा यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर हमारा सेंटर है और वहां पर इनके लिए बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, 250-300 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए हो, हाँ जी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं फिर तो जाइए। जो 2 मिनट के पहले ना हो गई, 2 मिनट के बाद हाँ हो गई। कैसे हाँ हो गई 2 मिनट के बाद? कि बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर थी तो सही समय पर सही टचिंग को कैच किया और वैसा करने में सफल हो गए। लास्ट पॉइंट, मेरे को 7:15 तक बोला, बस 2 मिनट में पूरा करता हूं। एक स्लोगन बहुत जगह लिखा हुआ देखा होगा आप लोगों ने कि तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। और मेरा अनुभव है कि भगवान सोचने का काम भी हमारे लिए करता है, क्या होगा होगा नहीं होगा कैसे करें ये सोचने के बजाय हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, बस बाबा को याद करें, भगवान सब कुछ हमारे लिए करता है। एक अनुभव, एक जगह हम भट्टी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्टी थी, तीसरे दिन उन्हीं के कनेक्शन में एक एक जगह 3 दिन की एक एक जगह अलग अलग सेंटरों पर भट्टी थी। तो एक ही दिन की भट्टी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे, तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिला था, काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की कमी हो रही थी। 4th दिन वहां की बहन जी ने एक 4th सेंटर पर मॉर्निंग क्लास कराने के लिए भेजा और जैसे ही 4th सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बहन जी ने जाते ही प्रोग्राम दे दिया कि भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना। अब मेरे को तो वही क्लास कराना थोड़ा मुश्किल लग रहा था लेकिन बहन जी ने और आगे का प्रोग्राम दे दिया। बहन जी को मैंने कुछ नहीं बोला और मैं बाबा को याद कर कहने लगा, बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है और बहन जी ने कहा एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना, तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप हो। ऐसे मैंने बाबा को याद कर बता दिया, बस क्लास पूरा किया, नाश्ता किया और बाबा ने बहन जी की बुद्धि को टच किया और बहन जी आके कहती है अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह बाबा, इसका मतलब हमारे मन की एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे कि भगवान मुझे देख रहा है, तो सदैव अलर्टनेस रहेगी, सब प्रकार के हलचल से मुक्त होकर एक अचल अडोल स्थिति बना सकेंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति।
तो भ्राता जी ने अचानक के पाठ में हाजी किया और आपको अपने अनुभव से लाभान्वित किया, अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा रहा। तो बहुत बहुत थैंक यू छोटेलाल भाई जी, अचानक के पाठ में आप भी पास और ये सब भी पास।